ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಮಹಾಪುರಾಣ ಅಧ್ಯಾಯ 2 ಔರ್ ಆಜ್ ಕಿ ಜೊ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ ರಹೇಗಿ ವೋ ರಹೇಗಿ 29 ಸೆ ಲೇಕೆ 32 ತಕ್. ತೋ ಆಪ್ ಸಭಿ ಮೇರೆ ಸಾಥ್ ಹಾತ್ ಜೋಡೆಂಗೆ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್. ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಅಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೇ ಭಕ್ತಿರ್ಭಕ್ತಿ ನೇಷ್ಟಕೀ. ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ದೇವಕೀ ನಂದನಾಯ ಚ ನಂದಗೋಪಕುಮಾರಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಇಸ್ ಪೇ 32 ಲೇ ಲೇಂಗೆ ಯಾ ಸಬ್ ಚಲೇಂಗೆ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ ದೊಹರಾಯೇಂಗೆ ಯಾ 32 ಮೇರೆ ಪೀಛೆ. ತೋ 29 ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ 29 30 ಔರ್ 31 ಮೈ ಪಢೂಂಗಾ ಔರ್ 32 ಆಪ್ ಮೇರೆ ಸಾಥ್ ದೊಹರಾಯೇಂಗೆ 32ವಾ ಶ್ಲೋಕ ಜಿಸ್ಕಾ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಪ್ರಭುಪಾದ ನೇ ದಿಯಾ ಹೈ. 29 ಔರ್ 30 ಕಾ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಹೀ ಹೈ ಔರ್ 31ವೇ ಕಾ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಭಿ ಏಕ್ ಲೈನ್ ಕಾ ಹೈ. ತೋ ಇಸಿಲಿಯೆ 32ವೇ ಶ್ಲೋಕ ಕೆ ಊಪರ್ ಜೊ ಹೈ ಹಮ್ ಪೂರ್ಣ ರೂಪ ಸೆ ಚರ್ಚಾ ಕರೇಂಗೆ. ತೋ ಯೇ ಜೊ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೈ ಅಧ್ಯಾಯ 2 ವಿಷ್ಣು ದೂತೋ ದ್ವಾರಾ ಅಜಾಮಿಲ್ ಕಾ ಉದ್ಧಾರ. ತೋ ಆಪ್ ಲೋಕ ಸುನ್ತೆ ಆ ರಹೇ ಹೈ ಇಸ್ ಸಮಯ ವಿಷ್ಣು ದೂತ್ ಅಜಾಮಿಲ್ ಕೋ ಮುಕ್ತ ಕರಾ ಕರ್ಕೆ ಚಲೇ ಗಯೆ ಹೈ. ಅಜಾಮಿಲ್ ಕುಛ ಕಹನಾ ಚಾಹತಾ ಥಾ, ಅಜಾಮಿಲ್ ಕುಛ ಬಾತ್ ಕರ್ನಾ ಚಾಹತಾ ಥಾ, ಲೇಕಿನ್ ವಿಷ್ಣು ದೂತ್ ಅಂತರ್ಧ್ಯಾನ್ ಹೋ ಗಯೆ ಔರ್ ಅಬ್ ಅಜಾಮಿಲ್ ಜೊ ಹೈ ಪಶ್ಚಾತಾಪ್ ಕರ ರಹಾ ಹೈ. ಪಶ್ಚಾತಾಪ್ ಕಿ ಅಗ್ನಿ ಮೇ ಅಜಾಮಿಲ್ ಜಲ್ ರಹಾ ಹೈ ಔರ್ ವಹಿ ಶ್ಲೋಕ ಜೊ ಹೈ ಇಸ್ ವಕ್ತ ಚಲ್ ರಹೇ ಹೈ. ಪಶ್ಚಾತಾಪ್ ಕೋ ಲೇಕರ್ ಕೆ ಅಜಾಮಿಲ್ ಬಡಾ ಬೇಚೈನ್ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ. ತೋ ಶ್ಲೋಕ ಮೈ ಪಡ್ತಾ ಹೂ ಔರ್ ಉಸ್ಕಾ ಅರ್ಥ ಭಿ ಪಡ್ತಾ ಹೂ. ಸೋಹಂ ವ್ಯಕ್ತಂ ಪತಿಷ್ಯಾಮಿ ನರಕೆ ಭ್ರಷ್ಟಾರುಣೆ ಧರ್ಮಗ್ನ ಕಾಮಿನೋ ಯತ್ರ ವಿಂದಂತಿ ಯಂ ಯಾತ್ನಃ. ಅಜಾಮಿಲ್ ಕೇ ರೇ ಅಬ್ ಯೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೈ ಕಿ ಐಸೆ ಕರ್ಮೋ ಕೆ ಫಲಸ್ವರೂಪ ಮುಝ ಜೈಸೆ ಪಾಪಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೋ ಉಸ್ ನಾರಕೀಯ ಅವಸ್ಥಾ ಮೇ ಫೇಂಕ್ ದಿಯಾ ಜಾನಾ ಚಾಹಿಯೇ. ಜೋ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತೋ ಕೋ ತೋಡನೆ ವಾಲೆ ಲೋಗೋ ಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಹೋತಿ ಹೈ ಔರ್ ಮುಝೆ ವಹಾಂ ಘೋರ್ ಕಷ್ಟ ಸಹನೆ ಚಾಹಿಯೇ. ಅಜಾಮಿಲ್ ಕೇ ರಹಾ ಹೈ ಕಿ ಮುಝ ಜೈಸೆ ಪಾಪಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೋ ಉಸ್ ನರಕೀಯ ಅವಸ್ಥಾ ಮೇ ಫೇಂಕ್ ದಿಯಾ ಜಾನಾ ಚಾಹಿಯೇ. ಜೊ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತೋ ಕೋ ತೋಡನೆ ವಾಲೋ ಲೋಗೋ ಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಹೋತಿ ಔರ್ ಮುಝೆ ವಹಾಂ ಘೋರ್ ಕಷ್ಟ ಸಹನೆ ಚಾಹಿಯೇ. ಯೇ ಪಶ್ಚಾತಾಪ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ, ಪಶ್ಚಾತಾಪ ಕಿ ಅಗ್ನಿ ಮೇ ಅಜಾಮಿಲ್ ಜಲ್ ರಹಾ ಹೈ. ಅಗಲಾ ಶ್ಲೋಕ ಕಿಮಿದಂ ಸ್ವಪನ್ ಆಹೋ ಸ್ವಿತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೃಷ್ಟುಂ ಇಹ ಅದ್ಭುತಂ ಕ್ವ ಯಾತ ಅದ್ಯತೇ ಮಾಂ ವ್ಯಕರ್ಷನ್ ಪಾಶ್ಪಾಣಯ. ಕ್ಯಾ ಮೇನೆ ಯೇ ಸಪ್ನಾ ದೇಖಾ ಥಾ ಯಾ ಸಚ್ಚಾಯಿ ಥೀ. ಮೇನೆ ಭಯಾವೆ ಪುರುಷೋ ಕೋ ಹಾತ್ ಮೇ ರಸ್ಸಿ ಲಿಯೆ ಮುಜ್ಕೋ ಬಂದಿ ಬನಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಆತೆ ಔರ್ ಮುಝೆ ದೂರ್ ಘಸೀಟ್ ಕರ್ ಲೇ ಜಾತೆ ಹುವೆ ದೇಖಾ. वे कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। अथाते क्व गता सिद्धा चत्वार चत्वार चारो दर्शना व्यामोचयम नियमानम बद्ध्वा पाशेर अधो भुवा। और वे मुक्त तथा अति सुंदर चार पुरुष कहाँ चले गए जिन्होंने मुझे बंधन से मुक्त किया और मुझे नारकीय क्षेत्रों में घसीटकर ले जाए जाने से बचाया। अब तीन श्लोक। पहले श्लोक में 29वें में अजामिल क्या कह रहा है कि मेरे को नारकीय यातनाएं मिलनी चाहिए। दूसरे श्लोक में वो देख रहा है कि वो यमदूत कहाँ चले गए जो मेरे को बंदी बनाने के लिए आए थे और मुझे दूर तक घसीट कर ले जाते हुए जिसको मैंने देखा था, वे कहाँ चले गए। और फिर इस 31वें श्लोक में और वे मुक्त तथा अति सुंदर चार पुरुष कहाँ चले गए जिन्होंने मुझे बंधन से मुक्त किया और मुझ नारकीय क्षेत्रों में घसीट कर ले जाए जाने से बचाया। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि नारकीय क्षेत्रों में घसीट कर ले जाए जाने से बचाया, ये जो है तो जैसा कि 5वें स्कंद के विवरण से हम जान चुके हैं कि नरलोक नरक लोक इस ब्रह्मांड के निचले हिस्से में स्थित है, इसीलिए उसे क्या कहा गया है, अधोभुआ, अधोभुआ कहलाता है। तो ये तीन श्लोक में जो है अर्थ ही है। तो अब हम चौथा जो 32वां श्लोक है वो मैं बोलूंगा, फिर आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। अथापि मे दुर्भगस्य विभूदोतम दर्शने भवितव्यं मंगलेना येनात्मा मे प्रसीदति। अथापि मे दुर्भगस्य विबुधोतम दर्शने भवितव्यं मंगलेना येनात्मा मे प्रसीदति। अथा इसलिए, अपि यद्यपि, मे मुझ, दुर्भगस्य इतने अभागे का, विबुध उत्तम उच्च भक्तों का दर्शन है, दर्शन करने से भवितव्यम होगा, मंगलेन शुभ कार्य, येन जिससे, आत्मा आत्मा में मेरी प्रसीदति वास्तव में सुखी होती है। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद ही, निश्चय ही मैं अति निंदनीय तथा अभागा हूं कि पाप कर्मों के समुद्र में डूबा हुआ हूं, किंतु फिर भी अपने पूर्व आध्यात्मिक कर्मों के कारण मैं उन चार महापुरुषों के दर्शन कर सका जो मुझे बचाने आए थे। उनके आने से अब मैं अत्यधिक सुखी अनुभव करता हूं। तात्पर्य, जैसा कि चैतन्य चरितामृत मध्य 22.54 में कहा गया है, साधु संघा सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। सभी शास्त्र भक्तों की संगति की, सभी शास्त्र भक्तों की संगति की संस्तुति करते हैं, क्योंकि एक क्षण की भी ऐसी संगति से सभी सिद्धियों के बीज प्राप्त हो सकते हैं। अजामिल अपने जीवन के प्रारंभ में निश्चित रूप से शुद्ध था और वह भक्तों तथा ब्राह्मणों की संगति करता था। अपने उसी पुण्य कर्म के फलस्वरूप पतित होते हुए भी उसे अपने पुत्र का नाम नारायण रखने की प्रेरणा मिली। निश्चय ही यह उस नेक सलाह के कारण था जो उसे अपने भीतर से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा दी गई थी। जैसा कि भगवद गीता में 15.15 में भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाम हरिशनिवष्टो मता स्मृति ज्ञानम पोहनम च, मैं हर व्यक्ति के हृदय के भीतर स्थित हूँ और मुझसे स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होती है। प्रत्येक हृदय में स्थित भगवान इतने दयालु हैं कि यदि किसी ने कभी उनकी सेवा की हो तो वे उसे भुलाते नहीं हैं। इस तरह भगवान ने अजामिल को भीतर से अवसर प्रदान किया कि वह अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखे, जिससे स्नेहवश वह उसे निरंतर नारायण नारायण कहकर पुकारा करे और इस तरह अपनी मृत्यु के समय सबसे भयावह तथा घातक स्थिति से बच सके। कृष्ण की कृपा ऐसी ही होती है। प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण की कृपा ऐसी ही होती है, कभी भूलते नहीं है भगवान, हम भूल जाते हैं भगवान नहीं भूलते। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, गुरु तथा कृष्ण की कृपा से मनुष्य को भक्ति का बीज मिलता है। यह संगति बड़े भक्त को बड़े से बड़े भय से बचाती है। हम अपने कृष्णा भावनामृत आंदोलन में भक्त का नाम ऐसे रूप में बदल देते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम भक्त का नाम बदल देते हैं, जब वो हमारे साथ इस्कॉन में जुड़ता है, दीक्षा लेता है, तो भक्तों का नाम बदल दिया जाता है। क्यों बदल दिया जाता है? जो उसे विष्णु का स्मरण कराए। यदि भक्त अपनी मृत्यु के समय अपना ही नाम यथा कृष्णदास या गोविंद दास स्मरण कर सके तो वह महानतम संकट से बच सकता है। इसलिए दीक्षा के समय नाम परिवर्तन अति आवश्यक है। कृष्णा भावनामृत आंदोलन इतना सतर्क है कि यह किसी न किसी रूप में कृष्ण का स्मरण कराने का सुअवसर प्रदान करता है। श्रील प्रभुपाद के, कितना सुंदर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं, एक एक वाक्य हृदय में छप जा रहा है। चलिए, ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्यामनुविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽं श्रीगुरो श्रीउत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाक्ष च श्रीरूपं सागरजातां सहगणरघुनाथवितं तं सजीवं सावदेतं सावदूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखानमिताक्ष। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तावृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भगवान जो हैं बड़े दयालु हैं, वो भक्त को छोड़ते नहीं। हमने अगर भक्ति की है तो भगवान तो भूलते नहीं हमारे को और महान भय से रक्षा करते हैं। नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। भगवद गीता में भगवान कहते हैं 2.40 में कि महान भय से रक्षा करते हैं भगवान, हमें पता नहीं होता। जब कभी हमने भगवान के साथ अपना संपर्क साधने का प्रयास किया था और किसी कारण से हमारा वो संपर्क टूट गया, हम भूल गए भगवान को, लेकिन भगवान तो हमें नहीं भूलते। वो याद रखते हैं कि हमने प्रयास किया था। फिर भगवान ऐसी योजना बनाते हैं, ऐसी योजना बनाते हैं कि हम वापस भगवान के साथ जुड़ सकें। तो अब इन श्लोकों में जो हम देख रहे हैं, अजामिल पश्चाताप की आग में जल रहा है। क्यों जल रहा है? क्योंकि उसने बहुत भारी पाप किए थे। प्रारंभिक जीवन उसका कैसा था? बड़ा ही नेक था, बड़े ही पुण्य कार्य किए थे, लेकिन फिर जब उसका एक वैश्या के साथ समागम हुआ, मिलन हुआ, तो उसका पाप में जीवन प्रारंभ हो गया और वो पश्चाताप कर रहा है। जब उसने पापपूर्ण कार्य किए तो उसका गंतव्य स्थान क्या था? उसको कहां जाना चाहिए था? नरक में जाना चाहिए था। और वो कहता है, मेरे को नरक में जाना है, मेरे को नरक में फेंक दो। कौन से नरक में जाना था उसको? कौन से नरक में जाना था? भूल गए? पांचवें स्कंद में आप नरकों की व्याख्या सुनते आ रहे थे। हाँ, नहीं नहीं, जो अजामिल ने कार्य किया उसके लिए उसको कौन से नरक में जाना था? तप्त सूर में। बहुत सुंदर, तप्त सूर में नरक उसका इंतजार कर रहा था कि अजामिल मेरे पास कब आएगा। तप्त सूर में नरक में क्या होना था? वहां पर तप्त लोह, तप्त लोह, एकदम लोहा, कैसा लाल सुर्ख लोहे की जो मूर्ति है, एक स्त्री की मूर्ति से उसका आलिंगन कराया जाना था। तो ये कार्य होने ही वाला था, ये कार्य होने ही वाला था कि ऐसे पुरुष का स्त्री से आलिंगन कराया जाता है। एक लोहे की तप्त, जो लोहे बिल्कुल लाल हो गया हो, गर्म हो गया हो, ऐसे से उसका आलिंगन कराते थे। और बहुत पीड़ा कितनी होती है वो बताने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ सकते हो कितना पीड़ा हो सकता है किसी जीव को। और उसके बाद केवल यही नरक नहीं मिलना था उसको, उसको रौरव और महारौरव नरक में मिलना था, क्योंकि उसने केवल यही कार्य नहीं किया था, केवल एक वैश्या का संग ही नहीं किया था, उसने अनेक लोगों की धन संपत्ति को भी लूटा था। परिवार का पालन करने के लिए उसने अनेक प्रकार के दुष्कर्म किए थे, तो वो नरक भी उसके इंतजार कर रहे थे। तो ये लक्ष्य उसका था, उसका डेस्टिनेशन क्या था? नरक, तप्त सूर में नरक। लेकिन नारायण का नाम उच्चारण करने से, और जो कि उसने अपने पुत्र को बुलाया था, एक सांकेतिक नाम लिया था, तो उसके सारे पाप नाश हो गए। ये हो सकता है? ये संभव हो सकता है? ऐसा मन में कई दफा विचार आता है, इतने पापों का नाश हो सकता है? आप बताइए, हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है, नाम से सारे पाप। अब मैं सोच रहा था कि कैसे हो सकता है, लेकिन ये हम किस प्रकार से नाम लेते हैं उसके ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। एक दिया सलाई होती है, दिया सलाई, माचिस, उस माचिस से, उस दिया सलाई से आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं। उससे आप एक साधारण सी सिगरेट और बीड़ी भी जला सकते हैं, उससे आप गैस का चूल्हा भी जला सकते हैं, और उसी दिया सलाई से किसी की करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति का भी स्वाहा हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? दिया सलाई वही है, आपने उससे सिगरेट जलाई, आपने उससे गैस का चूल्हा जलाया, या उसी दिया सलाई से किसी से करोड़ों अरबों की संपत्ति का नाश हो गया जिसने उसने जीवन भर में अर्जित की थी। जब एक दिया सलाई जीवन भर में अर्जित की गई करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति को स्वाहा कर सकती है, तो भगवान का नाम सब पूर्व जन्मों में अर्जित पाप कर्मों का नाश क्यों नहीं कर सकता? हम उसका उपयोग कैसे करते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता। भगवान के नाम का उपयोग हम कैसे करते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। कई बार हम देखते हैं किसी के पापों का नाश शीघ्रता से होता है और कई सालों साल जप करते रहते हैं उनको उतना लाभ नहीं मिल पाता। आपकी चिंगारी है, अरे भैया अगर जल में गिरेगी तो क्या होगा, तुरंत बुझ जाएगी। पृथ्वी पे गिरेगी तो कुछ समय तक रहेगी, और अगर सूखी घास पे गिर गई तो क्या होगा, सब सुहा कर देगी। तो हरिनाम ऐसा लेना चाहिए कि चिंगारी सूखी घास पे गिरे, जो हमारे पाप कर्मों का जो घास का ये जंगल है, ऐसा नाम लेना चाहिए। नाम लेने में ही तो अंतर है, नाम लेने में ही तो अंतर है। तो ये समझ में नहीं आती हम लोगों को बात, जब हम जाते हैं लोगों को कहते हैं कि भाई ये करना है, तो लोग जो है कतराते हैं, घबराते हैं, उनको भी समझ में नहीं आती कि भगवान का ये भगवान का कानून है, भगवान के कानून का पालन करना होगा। जिस देश में हम रहते हैं, जिस भी देश में हम रहते हैं, उसके कानून का पालन करना पड़ता है हमको कि नहीं करना पड़ता। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, सुख आएगा कि दुख आएगा, दुख आएगा ना। जिस देश में हम रहते हैं अगर उस देश के कानून का पालन नहीं करेंगे तो ना समझ से ना समझ व्यक्ति बच्चा भी जानता है कि मेरे को दुख आएगा, मेरे को कष्ट भोगना पड़ेगा, मेरे को उसका रिएक्शन भोगना पड़ेगा। जब भगवान के कानून की बात आती है, भगवान के नियम की बात आती है, तो फिर हम आंख बंद कर लेते हैं। अजामिल ने भी आंख बंद कर ली थी। ये संसार भगवान का है, जिस संसार में आप रह रहे हो उसके नियमों का भी पालन आपको करना पड़ेगा। सरकार के कानून अलग होते हैं और भगवान के कानून अलग होते हैं। अगर आप एक चींटी को मार दोगे तो क्या भारत की सरकार आपको गिरफ्तार करेगी, बताइए? एक चींटी को मारने से क्या भारत सरकार आपको गिरफ्तार करेगी, नहीं करेगी। लेकिन क्या भगवान छोड़ेंगे? तो भगवान का कानून उसको पालन नहीं करते ना हम, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसीलिए हमारे जीवन में दुख आते हैं। देश का कानून पालन नहीं करोगे तो देश आपको जेल के अंदर भेज देगी। भगवान के कानून का पालन नहीं करोगे तो भगवान जेल में नहीं भेजेंगे, जेल आपके पास आ जाएगी। आपके पास ऐसे ऐसे दुख आ जाएंगे कि आप जहां रहते हो वही जेल बन जाएगी, आपका घर ही आपकी जेल बन जाएगी, आपको जेल जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ने धर्म की रचना की, भगवान का यह ब्रह्मांड है, भगवान सारे जगत के पालनहार हैं, उनके नियम हैं। तो चार नियम तो हम भी जानते हैं, धर्म के चार स्तंभ हैं, चार पिलर हैं। कौन कौन से हैं? जब परीक्षित महाराज जा रहे थे बैल के रूप में, उन्होंने धर्म को देखा, उसके तीन तीन पैर उसके नहीं थे, एक पैर के ऊपर खड़ा था और उसका वध होने ही वाला था कलयुग के द्वारा। तो परीक्षित महाराज आ गए और उसको रोका कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो जो बैल था चार, जिसके चार जिसके टांगे या चार जिसके टांगों के ऊपर वो बैल था, उसकी तीन टांगों का तो नाश हो चुका था, कट चुकी थी, एक टांग के ऊपर खड़ा था। तो वही चार नियम हमारे संस्था में है, इस्कॉन में, जो हमको पालन करवाए जाते हैं। तो पहला नियम क्या है, धर्म का पहला स्तंभ क्या है, तपस्या, तपस्या है ना, और तपस्या से कौन सा नियम जुड़ा हुआ है, नशा। अगर नशा करोगे तो तपस्या नहीं कर पाओगे, है ना। जो कहते हैं ना हमको नो इंटॉक्सिकेशन, हमको कोई किसी प्रकार नशा नहीं करना, किस लिए, कि तपस्या नहीं होगी, भजन नहीं होगा, जप नहीं होगा अगर नशा करेंगे तो। तो पहला नियम है, पहला सिद्धांत है धर्म का, तपस्या। और दूसरा है पवित्रता। पवित्रता का किससे संबंध है, अवैध स्त्री संग जो अजामिल ने किया, पवित्रता उसकी नष्ट हो गई। और तीसरा दया। दया से कौन सा नियम है, मांसाहार। मांसाहार करेंगे तो हमारे अंदर दया नहीं रहेगी। और सत्यता। ये सत्यता मतलब जुआ लॉटरी। तो धर्म रूपी बैल के तीन टांगे कट चुकी थी, अब एक टांग पे खड़ा था, वो कौन सा था, सत्यता। सत्यता पे खड़ा है और वो भी लड़खड़ा रहा है बैल। तो ये नियम हम अगर पालन नहीं करेंगे, देश के नियम हम इसलिए पालन करते हैं कि हम सुखी रहें, लेकिन भगवान के नियम पालन करने से हम सुखी होंगे ये हमको मालूम नहीं। तो इस प्रकार से इस बात को हमारे को समझना होगा कि ये कानून, भगवान के नियमों का पालन करना कितना आवश्यक है। और जब अजामिल पापों से मुक्त हो गया, उसने नाम लिया, सांकेतिक नाम लिया, पापों से मुक्त हो गया, लेकिन इतना ही काफी नहीं, पापों से मुक्त होना काफी नहीं। अगर हमको भक्ति में आगे बढ़ना है, अगर हमको भक्ति मार्ग पे आगे चलना है, तो हमको क्या करना होगा, जितने भी हमने पाप कर्म किए हैं उन सब के लिए हमको प्रायश्चित करना होगा, रिपेंटेंस। जब तक प्रायश्चित नहीं, तब तक हम भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। हमें रोना होगा, हमने जाने अनजाने में जो पाप कर्म किए हैं उसके लिए हमें रोना होगा। और सबसे बड़ा रोना क्या है, सबसे बड़ा प्रायश्चित क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये सबसे बड़ा प्रायश्चित, ये सबसे बड़ा प्रायश्चित है, भगवान को पुकारना, भगवान को इस भाव से पुकारना कि मेरे से जो भी पाप कर्म हुए हैं उसके लिए पाहि माम। कृष्णा 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 रक्ष माम, राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम, रक्ष माम पाहि माम। मैं आपकी शरण में आ रहा हूं, मैं पश्चाताप करना चाहता हूं। तो यहां अजामिल ने पश्चाताप किया, और हम देखते हैं जब राजा परीक्षित शमिक ऋषि के आश्रम में पहुंचा और उन्होंने उनके गले में क्या डाल दिया, मरा हुआ सांप डाल दिया, और वापस लौट ही रहे थे तो उनको पश्चाताप होने लगा राजा परीक्षित को। क्या बोलने लगे, महीपतिस्ता त्वथा तत्कर्म गह्यम विचिन्त्यम विचिन्त्य आत्मा कृतम सुदुर्मना अहो मया नीचम अनार्य व्रत कृतम गिरा निरागसी ब्रह्मणी गूढ़े तेजसी। घर लौटते हुए महाराज परीक्षित ने अनुभव किया कि उन्होंने निर्दोष और शक्तिमान ब्राह्मण के प्रति जघन्य तथा अशिष्ट व्यवहार किया है, फलस्वरूप वे बहुत ही पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे महाराज परीक्षित। हालांकि शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और शिला जीव गोस्वामी यह नहीं मानते कि राजा परीक्षित को उनके दुष्कर्मों के कारण ये घटना घटी। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं 1831 में कि यह योजना तो भगवान ने राजा को अपने घर भगवत धाम में वापस बुलाने के लिए बनाई थी, लेकिन फिर भी वो प्रायश्चित कर रहे थे, वो प्रायश्चित की आग में जल रहे थे। जब राजा स्वर्ग के राजा इंद्र द्वारा महाराज पृथु के घोड़े को चुरा लिया गया, 100वां अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे थे और घोड़े को चुरा लिया गया, हालांकि बड़े शक्तिशाली थे राजा इंद्र, भगवान विष्णु उनके साथ थे, लेकिन अंततः उनको भी पश्चाताप हुआ और वो महाराज पृथु के चरणों में गिरना चाहते थे, उनसे क्षमा मांगना चाहते थे, लेकिन महाराज पृथु इतने उदार थे कि स्वर्ग के राजा इंद्र को अपने चरणों में गिरने नहीं दिया। तो पश्चाताप की अग्नि कितनी आवश्यक है। राजा प्राचीन भविष्यत को भी प्रायश्चित हुआ, जब नारद मुनि उसके जीवन में आए और उसको दिखाया, पुरंजन की कथा सुनाई, कितने पशुओं का तुम वध कर चुके हो, तो पश्चाताप हुआ। पश्चाताप होना बहुत जरूरी है। अनेक पश्चाताप हुए, आप सोच सकते हो, मनन कर सकते हो, यही चिंतन और यही मनन यही हमको करना है। मृगारी का पश्चाताप है, वाल्मीकि का पश्चाताप है, पूर्व जन्म में रत्ना का डाकू था, और किस किस का पश्चाताप हुआ, बिल्वा मंगल ठाकुर का पश्चाताप है, हरिदास ठाकुर के घर जो वैश्य आई थी उसका पश्चाताप है, वो भी परम वैष्णवी बनी, और भरत महाराज का पश्चाताप, जिन्होंने हिरण का शरीर प्राप्त किया, हिरण के शरीर में वो पश्चाताप करते रहे और उनको फिर क्या मिला, भक्त के शरीर के रूप में, है ना, एक बहुत ही ब्राह्मण बड़े कुलीन ब्राह्मण परिवार में उनका जो है जन्म हुआ। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, शुचि नाम श्रीमताम गे हे योग भ्रष्टो भी जायते, जो एक जीवन में भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता उसका जन्म कहाँ होता है, किसी बहुत ही संपन्न परिवार में या किसी अच्छे ब्राह्मण कुल में उसका जन्म होता। तो ये पश्चाताप की अग्नि में हमको जलना चाहिए। सुबुद्धि राय की कथा भी आपने सुनी, उनको भी पश्चाताप करना था, और कौन सी कथा पश्चाताप की, जगाई और मधाई की कथा, जब महाप्रभु आ गए, नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर जब प्रचार कर रहे थे और मधाई ने जब उनको सर पे चोट पहुंचाई और महाप्रभु आ गए उनका वध करने के लिए, तो जगाई ने सबसे पहले पश्चाताप किया और भगवान ने क्या किया, महाप्रभु ने जगाई को तुरंत गले आलिंगन कर लिया और फिर मधाई को भी कृपा दी। तो ये पश्चाताप की अग्नि हमको भक्ति में आगे बढ़ाती है और अंततः श्रील प्रभुपाद ने भी पश्चाताप किया था। कब किया था, प्रारंभिक जीवन में जब वो अपना गृह त्याग कर वृंदावन आ गए थे और वृंदावन में एकांत स्थान में बैठे थे और कुछ पश्चाताप था उनके मन में, पश्चाताप की अग्नि उनको भी जला रही थी और वहां उन्होंने वृंदावन भजन के नाम से एक कविता लिखी थी। तो उसकी दो चार लाइनें हम पढ़ेंगे, हालांकि ये बुक मेरे पास इंग्लिश में थी तो मैं इंग्लिश में ही पढ़ूंगा, साधारण सा है, आप समझ जाएंगे। तो प्रभुपाद कहते हैं, आई एम सिटिंग अलोन इन वृंदावन धाम, मैं वृंदावन धाम में आज अकेला बैठा हूं। इन दिस मूड आई एम गेटिंग मैनी रियलाइजेशंस, और आज मेरे को बहुत सारा अनुभव हो रहा है, बहुत सारा साक्षात्कार मुझको हो रहा है। क्या साक्षात्कार हो रहा है, मेरी पत्नी है, प्रभुपाद कह रहे हैं, आई हैव माई वाइफ, मेरे बच्चे हैं, सन्स डॉटर्स बेटियां हैं, बेटे हैं बेटियां हैं और पोते भी हैं, ग्रैंड सन पोते भी हैं, मेरे पास सब कुछ है। बट आई हैव नो मनी, पर मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, और इसीलिए ये सब कुछ होते हुए भी मेरे लिए सब बेकार है. बट आई हैव नो मनी सो दे आर फ्रूटलेस ग्लोरी, मेरे लिए सब बेकार है. पैसा था तो सब मेरे साथ थे, पत्नी बेटा बेटियां पोते सब साथ थे, लेकिन आज पैसा नहीं है तो मेरे लिए सब बेकार हो चुका है. कृष्णा है शोन मी नेकेड फॉर्म ऑफ मटेरियल नेचर, कृष्ण ने मेरे को भौतिक प्रकृति का एक नग्न रूप दिखाया. बाई हिज स्ट्रेंथ इट हैज ऑल बिकम टेस्टलेस टू मी टूडे, और उसकी शक्ति से आज मेरे लिए सब ये स्वादहीन हो चुका है. मेरे को किसी चीज में स्वाद नहीं आ रहा, केवल भगवान की शक्ति से ये सब स्वादहीन हो चुका है. यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्यते तद्धनम स्नेहा, यहां लिखते हैं आई ग्रेजुअली टेक अवे ऑल द वेल्थ ऑफ दोज अपॉन हुम आई एम मर्सीफुल, जिसके प्रति मैं बहुत अनुग्रह करता हूँ, कृपा करता हूँ, उसकी संपत्ति का हरण कर लेता हूं. एवरी वन हैज अबंडेंट मी सींग मी पेनीलेस, आज मेरे को सबने छोड़ दिया है, मेरे को निर्धन देख करके, मेरे पास धन नहीं है इसलिए सबने मेरा परित्याग कर दिया है. पत्नी ने, संबंधियों ने, मित्रों ने, भाइयों ने, वाइफ रिलेटिव फ्रेंड ब्रदर्स एवरीवन, दिस इज मिजरी, ये दुख है, लेकिन मैं इस दुख में हंस रहा हूं. आज मुझको हंसी आ रही है और प्रभुपाद हंस रहे हैं. तो ये पश्चाताप प्रभुपाद को कहां पहुंचाया, प्रभुपाद को कहां पहुंचा दिया पश्चाताप ने, प्रभुपाद को पूरा विश्व प्राप्त हो गया इस पश्चाताप से. जो परिवार, एक परिवार उन्होंने छोड़ा था, पूरा विश्व उनका परिवार बन गया. तो इस प्रकार से जो है, जब ये चल रहा है, और यहां शिला प्रभुपाद तात्पर्य में जो अगली बात लिखते हैं वो लिखते हैं कि ये जो नाम का लेना है ये कितना मुख्य बात है, और इसीलिए हमारी संस्था में दीक्षा के समय नाम परिवर्तित कर दिया जाता है, ताकि जाने अनजाने में चाहे अपना ही नाम कोई जप कर ले तो वो उस महान भयावह स्थिति से बच सकता है. तो मुख्य बात यह है कि भगवान का नाम जप करना है, और जैसा कि इस श्लोक में पीछे आप पढ़ चुके हैं, अज्ञानात अथवा ज्ञानात उत्तम श्लोक नाम यत संकीर्तितम अघम पुंसो देहद अधो यथानला, जिस तरह अग्नि सूखी घास को जलाकर राख कर देती है, उसी तरह भगवान नाम चाहे वे जाने अनजाने में उच्चारण क्यों न किया जाए, मनुष्य के पाप कर्मों के सभी फलों को निश्चित रूप से जलाकर राख कर देते हैं. और फिर क्या बताया गया है, यथागदम वीरतम उपयुक्तम यद ऋच्छया अजानतो अतियातम गुणम कुरियान मंत्रो उदात्तता, यदि किसी दवा की प्रभावकारी शक्ति से अनजान व्यक्ति उस दवा को ग्रहण करता है या उसे बलपूर्वक खिलाई जाती है तो वह दवा उस व्यक्ति के जाने बिना ही अपना कार्य करेगी. आपको बताना नहीं पड़ेगा कि दवा में कितनी शक्ति है, आप जानबूझ के लो या अनजाने में लो. और फिर एक श्लोक जो बड़ा मुख्य है, उस श्लोक को मैं पढ़ रहा था और उसके ऊपर मैंने एक कोई प्रवचन भी सुना था. क्या श्लोक है वो, यहां वो देहूति बताते हैं कपिल देव को, अहो वर्ष पचदो गरियान यद जिगारे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जिवा पे अग्रभाग पे नाम रहता है, स्वपचतो, चाहे वो कुत्ते का मांस खाने वाला हो, तेपुस तपस्य जुहो ससनो नार्या ब्राह्मण चरणम ग्रणति ये ते, अहो वे कितने धन्य हैं जिनकी जीवाएं आपके पवित्र नाम का जप करती हैं, कुत्ता खाने वाले वंशों में उत्पन्न होते हुए भी ऐसे व्यक्ति पूजनीय हैं. जो व्यक्ति आपके पवित्र नाम का जप करते हैं उन्होंने सभी प्रकार की तपस्याएं की होंगी, तीर्थ स्थानों में स्नान और वेदों का अध्ययन आदि सब कर लिया है. तो मतलब बताया गया है कि कुत्ते का मांस खाने वाला भी पूजनीय है। अब मैं ये इसके ऊपर एक प्रवचन सुन रहा था जो इस्कॉन मुंबई का, तो वहाँ भीमा प्रभु लेक्चर दे रहे थे और उन्होंने लेक्चर में पूछा कि भाई यहाँ भारत में ये कुत्ते का मांस कौन खाता है, हमने तो कहीं देखा नहीं। आप में से किसी ने देखा है कुत्ते का मांस खाने वाला? हाँ, कहाँ? नागालैंड में। अच्छा, पता नहीं अब नागालैंड में कुत्ते का मांस, हम तो कभी गए नहीं, नेट पे देखा था। तो ये भीमा प्रभु ने प्रश्न किया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम बताते हैं कुत्ते का मांस कहाँ खाया जाता है। तो उन्होंने कहा कि साउथ कोरिया में ओलंपिक्स हुए थे, गेम्स होते हैं ना, ओलंपिक्स गेम्स तो साउथ कोरिया में हुए थे, सियोल में, तो सारे विश्व के लोग वहाँ पहुँचे थे। तो अमेरिका के भी बहुत सारे भक्त लोग कह रहा हूँ, अमेरिका के भी बहुत सारे लोग वहाँ पहुँचे थे, खिलाड़ी। तो उनको जब खाना परोसा जा रहा था, तो खाना परोसते परोसते उनके सामने सूप आया, तो वो सूप पीने लगे। तो उन्होंने पूछा कि ये सूप काय का है, तो उनको बताया गया दिस इज डॉग सूप, ये कुत्ते का सूप है। अब कुत्ते का सूप पी रहे हैं, लेकिन पीते पीते उनकी आंखें डबडब आ गईं, आंखों में पानी आ गया और आंखों से पानी बहने लगा। आप रो क्यों रहे हैं? बोले डॉग इज माय बेस्ट फ्रेंड, अमेरिका में कुत्तों से अच्छा उनका कोई मित्र नहीं है। और वो कहते हैं आज हमें कुत्ते को सूप के रूप में पीना पड़ रहा है, ये हमारे लिए बड़े दुख की बात है। तो मतलब ये कुत्ते का सूप पी रहे हैं और रो रहे हैं, उनको कुत्ते से इतना प्रेम होता है, कुत्तों से प्रेम होता। तो आध्यात्मिक जगत में जो उत्कृष्ट सेवा होती है, उत्कृष्ट सेवा क्या होती है? कृष्ण प्रेम। और भौतिक जगत में वही निकृष्ट सेवा हो जाती है जब हम गॉड से प्रेम नहीं करते, तो किससे प्रेम करते हैं? डॉग से प्रेम करते हैं। अभी एक प्रवचन में हम सुन रहे थे, गुरु महाराज बता रहे थे, बोल रहे थे कि हम वहां बैठे थे एक बीच पे समुद्र के किनारे, तो वहां भक्त लोगों के साथ थे और कीर्तन कर रहे थे। तो वहां पर एक महिला आ गई, तो महिला आके ही बहुत घबरा रही थी, पूछ रही थी कि आप लोगों ने मेरा कुत्ता देखा है, मेरा कुत्ता खो गया है, मेरा कुत्ता देखा आपने? तो गुरुमान, हमने तो आपका कुत्ता नहीं देखा। आपने कुत्ता नहीं देखा? मेरा कुत्ता खो गया, मेरा बहुत प्यारा कुत्ता। और गुरुमान कह रहे थे थोड़ी देर के बाद फिर आई और फिर उसने उस कुत्ते की नाम रूप गुण लीला कहना शुरू कर दिया। मेरा कुत्ते का नाम ये था, उसके रूप ऐसा था, उसका गुण ये था, और उसकी लीलाएं भी वो बताने लगी कुत्ते की। तो जब भगवान से प्रेम नहीं करेंगे तो फिर कुत्ते से प्रेम करेंगे। और ऐसे कुत्ते का मांस खाने वाला भी क्या हो जाता है? पूजनीय हो जाता है। जिसने हरि नाम ले लिया, जिसने हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय ले लिया, वो चाहे जिस भी अवस्था में है, कृष्ण उसको छोड़ेंगे नहीं। कृष्ण उसको छोड़, जैसे अजामिल को नहीं छोड़ा। तो भक्ति करना है। वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनित्य आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद एतुकम। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही क्या हो जाता है? अहेतुक ज्ञान, उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है और संसार से वैराग्य प्राप्त हो जाता है। फिर न तो कुत्ते से राग रहता है, न ही और लोगों से भी राग रहता है। वैराग पैदा हो जाता है केवल भगवान की भक्ति करने से। इसलिए बताया गया है, बड़ा ही सुंदर श्लोक है, कि भक्ति करने से तीन चीजें एक साथ मिलती हैं, तीन चीजें एक साथ प्राप्त होती हैं। कौन सा श्लोक है? 11:2:42, जा करके पढ़ सकते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा था मेरे को जब पढ़ रहा था। तो क्या है?
भक्ति परेशानो भवो विरक्ते अन्यत्र चैषा तृक एक काला प्रपद्यमानस्य यथा अश्नतास्युस तुष्टि पुष्टि शुद्ध अपायो नुघासम। 11:2:42 ग्यारह स्कंद दूसरा अध्याय 42वां। जिस व्यक्ति ने भगवान की शरण ग्रहण कर ली, भगवान की शरण ग्रहण करने का मतलब है भगवान के नाम की शरण ग्रहण कर ली, उसके लिए भक्ति और भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव और अन्य वस्तुओं से विरक्ति, तीन चीजें, भक्ति और दूसरा भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव और तीसरा विरक्ति, ये तीनों एक साथ प्राप्त हो जाती हैं। एक साथ कैसे प्राप्त होती है आगे उदाहरण में समझाया है। जिस तरह भोजन करने वाले व्यक्ति के लिए प्रत्येक कौर में एक कौर अगर वो मुंह में डालेगा तो उसको तीन चीजें प्राप्त होगी। भोजन करने वाले को क्या क्या प्राप्त होगा? एक तो उसको आनंद प्राप्त होगा, जब भूख लगती है भोजन खाते हैं आनंद मिलता है कि नहीं? प्रसाद, प्रसाद पाते हो आनंद मिलता है, तो आनंद प्राप्त होता है। दूसरा क्या प्राप्त होता है? पोषण, शरीर को पोषण मिलता है। और तीसरा क्या प्राप्त होता है? भूख से छुटकारा। तीन चीजें प्राप्त हो गई, आनंद की प्राप्ति, पोषण और भूख से छुटकारा। और इसी तरीके से भगवान का नाम जप करने से आपको क्या प्राप्त होगा? भगवान की भक्ति प्राप्त होगी और प्रत्यक्ष भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होगा और संसार से वैराग्य प्राप्त होगा। वो संसार जो हमारे को दुख देने वाला है उससे हमको वैराग हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ। श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय, शिला प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। Yeah.